सातवां चैप्टर प्राचीन भारतीय इतिहास दर्शन तथा इतिहास लेखन। एक लंबी अवधि के विद्वानों के एक वर्ग में यह मान्यता प्रचलित रही है कि प्राचीन भारतवासियों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का अभाव था। घटनाओं के विवरण में तिथि क्रम के सही निर्वाह के प्रति उदासीनता एवं तथ्य विषय विशेष की तथ्य विशेष को कल्पित एवं पौराणिक कथाओं के परिवेश में रखकर विकृत करने की प्रवृत्ति ने इस मान्यता को आधार सा प्रदान किया। इन विद्वानों ने इस अवधारणा का प्रतिपादन किया कि भारतीय घटनाओं के तथ्यपरक विवरण में रुचि नहीं रखते थे। उन्होंने इस अरुचि के मूलभूत कारणों की भी गवेषणा की है और उन्हें भारतीय धर्म, मनोवृत्ति, जलवायु आदि में आरोपित करने का प्रयास किया है। उनके कथानुसार भारत में मनुष्य प्रकृति के समक्ष स्वयं को तुच्छ और असमर्थ पाता है और तत्परिणाम स्वरूप उसमें अपनी नगण्यता का जीवन की व्यर्थता की भावना जन्म लेती है। उसे जीवन की अनुभूति एक भयानक दुःस्वप्न के रूप में होती है और दुःस्वप्न का इतिहास नहीं हो सकता। अपनी अतिशय निष्क्रियता एवं निरपेक्षता की भावना के कारण उनमें विश्व निर्माण की क्षमता का अभाव दिखाई पड़ता है। वे वर्तमान भौतिक जीवन की अपेक्षा आगामी जीवन में अधिक रुचि रखते थे। उनके लिए दृश्यमान जीवन माया अथवा भ्रम स्वरूप था तथा श्मशान भूमि से परे स्थित जीवन वास्तविक था। काल विवेचन इतिहास रचना का आधार है और भारतीयों ने समय को सदैव गौण स्थान दिया है। अतएव तिथि क्रम के यथार्थ प्रस्तुतिकरण की ओर से वे उदासीन रहे हैं। प्रस्तुत अध्याय में लेखक ने भारतीय इतिहास लेखन के संबंध में इन धारणाओं का निराश करते हुए इस तथ्य पर विश्वास करने का आग्रह किया है कि भारतीयों के मन में इतिहास की एक अभिन्न अवधारणा थी जिसे उसने अपने तर्कसम्मत प्रमाणों से किया है। भारतीय इतिहास लेखन की निरर्थक आलोचना करने के स्थान पर भारतीय विशिष्ट इतिहास दृष्टि को आत्मसात करना अभिष्ट है। हीरानंद शास्त्री का यह विचार समीचीन नहीं है कि प्राचीन भारतीयों ने इतिहास की ओर ध्यान नहीं दिया। जहाँ तक भारतीयों की तथाकथित ऐतिहासिकता के स्रोत को उनके दार्शनिक सिद्धांतों में देखने का प्रश्न है, यह ध्यातव्य है कि भारतीय विचार में वर्तमान जीवन को कभी भी सर्वथा नगण्य नहीं माना गया है। इह चैव वेदित सत्य को यही जानना है और इसी जीवन में ही धर्म का आचरण करना है। सदैव से ही हिंदू धर्म की यह निष्ठा रही है। कर्म और मायावाद के सिद्धांतों को निष्क्रियता एवं निरपेक्षता का स्रोत मानना इन सिद्धांतों के अज्ञान का परिचायक है। कर्म के सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या यथास्थान आगे की जाएगी। यहाँ केवल यह जान लेना पर्याप्त है कि कर्मवाद नियतिवाद से भिन्न है तथा क्रिया स्वातंत्र की अपेक्षा रखता है। मायावाद के प्रसिद्ध प्रतिपादक शंकराचार्य ने भी उन कार्यों से विमुख नहीं हुआ जिनका निर्वाह वे अपना उत्तरदायित्व समझते थे। सारे भारत का भ्रमण करके अपने सिद्धांत का प्रतिपादन और प्रचार करने वाला दार्शनिक क्या संसार के मिथ्या तत्व को इन विद्वानों के अनुसार समझता था? संसार के मिथ्या तत्व के प्रतिपादन का स्तर दूसरा है। इसमें दृश्यमान विश्व की सामान्यता, मान्य यथार्थता तथा और तद अनुसार उत्तरदायित्व निर्वाह का तिरस्कार नहीं निहित है। जगत के मिथ्या तत्व का अर्थ केवल इतना है कि यह परम सत्य नहीं है। परम सत्य केवल ब्रह्मन है और जगत उसका विवर्त है। जगत की सत्यता तद प्रसूत सत्यता है और इसकी मिथ्या सत्ता केवल किसी अन्य सत्ता पर आश्रित होने के कारण है। इस अभियोजन के प्रत्याख्यान में बहुत कुछ कहा जा सकता है। वास्तविकता यह है कि कर्म और मायावाद से विश्वास होने पर भी भारतीयों ने एक गौरवपूर्ण इतिहास का निर्माण किया और भारतीय इतिहास के अज्ञानी ही उनके महती उपलब्धियों से अपरिचित होंगे। इस जीवन के महत्व को भारतीयों ने सदैव समझा। चैरवती भारतीय ऋषियों की वाणी रही है। इह चैव वेदित सत्य को यही जानना है। भारत कर्म भूमि है, ऐसा विभिन्न ग्रंथों में कहा गया है, किंतु यह सत्य है कि इतिहास जिस रूप में आज परिभाषित होता है उस रूप में भारतीयों ने इतिहास रचना नहीं की। भारत में अतीत को स्मृति इतिहास के रूप में नहीं सुरक्षित की गई। अतीत दो प्रकार का होता है, मृत अतीत जैसे घटनाएं, व्यक्ति इत्यादि, तथा दूसरा जीवंत अतीत अर्थात परंपराएं, जिनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संप्रेषण होता रहता है। भारत में परंपराओं की सुरक्षा का प्रयास ऐतिहासिक स्मृति के रूप में नहीं किया जाता था, इसमें सभी की क्रियात्मक सहभागिता आवश्यक समझी जाती थी। विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने इतने सुदूर अतीत का इतना बड़ा भाग सुरक्षित रखा हो। भारत में सदैव यह विश्वास किया गया कि हम अतीत के वंशधर हैं, जिसकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है तथा जिसमें योगदान करते हुए हमें ऋण मुक्त होना है। वैदिक युग से ही यह विश्वास प्रचलित था कि मनुष्य तीन ऋणों, पितृ ऋण, देव ऋण तथा ऋषि ऋण के साथ उत्पन्न होता है, तथा इन ऋणों से मुक्ति पाने के लिए क्रमशः वंशवर्धन, विद्याभ्यास एवं यागिक कर्म की अपेक्षा है। अतएव निश्चित रूप से परंपरा के प्रति चेतना तथा उत्तरदायित्व की भावना भारतीयों में विद्यमान थी। आज भी दक्षिण भारत में ऐसे पंडित हैं जो वैदिक यज्ञों का संपादन उसी कुशलता के साथ कर सकते हैं जैसे वे 3000 वर्ष पूर्व संपादित होते थे। इसी भावना के कारण प्राचीन ग्रंथों का समय समय पर संपादन तथा उन्हें निरंतर नूतन एवं बुद्धिगम बनाए जाने का प्रयास किया जाता रहा है। महाभारत को सदैव समय अनुकूल बनाया जाता रहा है। इसी प्रकार पुराणों में परिवर्धन तथा परिवर्तन आधुनिक युग तक किए जाते रहे। भारतीयों की तथाकथित ऐतिहासिकता के अभियोजन के पीछे भारत में ऐतिहासिक रचनाओं की अपेक्षाकृत क्षीण उपलब्धि भी है। यहाँ यह स्मरणीय है कि संभवतः प्राप्त सामग्री वस्तुतः अस्तित्वमान सामग्री का अत्यंत थोड़ा अंश मात्र है। ज्ञान की एक शाखा अथवा अध्ययन के एक विषय के रूप में इतिहास को अत्यंत आदरणीय स्थान प्राप्त था। इस शासकों के लिए इतिहास अध्ययन पर बल देते हुए कौटिल्य ने इसके व्यवहारिक लाभ को स्वीकार किया है। साथ ही इसके प्रमाण उपलब्ध हैं कि शासकों के यहाँ शासकीय तथा प्रशासकीय विवरण तैयार किया जाता था। कम से कम मौर्यों के समय से तत्संबंधी विभाग का होना एक ऐतिहासिक तथ्य है। गुप्त अभिलेखों में अचपटलाधिकृत नामक अधिकारी का उल्लेख है। विविध शासन वंशीय उथल पुथलों के कारण ये विवरण अब अप्राप्य हैं। यह कहना सत्य नहीं है कि भारत में इतिहास उपेक्षित रहा, तथापि कुछ अर्थों में इसकी उपेक्षा की गई। उदाहरण के लिए जब भी किसी धर्म अथवा दर्शन की प्रमुख परंपरा का संकलन किया गया, इसके प्रलेखों अथवा प्रतिपादकों के विषय में ठीक ठीक तथा विस्तृत विवरण नहीं रखा गया, न ही परिवर्तित अंशों को प्राचीनतर भाग से पृथक रखने की चेष्टा की गई। बृहदकाय वेदों पुराणों के रचनाकारों के विषय में हम सर्वथा ज्ञान शून्य हैं। इसी प्रकार जब रामायण, महाभारत तथा पुराणों को अनुश्रुत इतिहास के रूप में कल्पित किया गया तथा उन्हें काल्पनिक अथवा अर्धकाल्पनिक प्राचीनता से समन्वित किया गया, तो एक आलोचनात्मक विवेक द्वारा ऐतिहासिक सामग्री को अनैतिहासिक सामग्री से पृथक नहीं किया गया। शासकीय प्रलेखों के आधार पर जब बाण रचित हर्षचरित तथा कलहन रचित राजतरंगिणी जैसी ऐतिहासिक जीवनियां लिखी गई, तो इतिहास और कल्पना के समन्वय को बचाने के लिए उपयुक्त चेष्टा नहीं की गई। यद्यपि राजतरंगिणी के तथ्यों को कल्पना से पृथक करने का प्रयास है, किंतु सामान्यतया यहाँ भी इतिहासकार कवि की भूमिका ग्रहण करते हुए दिखाई पड़ता है। वस्तुतः भारतीयों ने केवल जानकारी के लिए ऐतिहासिक तथ्यों के लेखन में अपेक्षित रुचि नहीं ली, अतीत तथा उसकी स्मृति की सुरक्षा को उन्होंने धार्मिक तथा काव्यात्मक मूल्यों के अधीनस्था रखा। इतिहासकार एक आलोचनात्मक बुद्धि से समन्वित तथा केवल अतीत के तथ्यों में रुचि रखने वाला व्यक्ति होता है, तथा इतिहास एक आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक तथा पक्षपात शून्य लेखन है। इतिहासकार तथा इतिहास का यह आदर्श भारतीयों द्वारा अधिक महत्व ग्रहण करता हुआ नहीं प्रतीत होता। अतीत के विषय में जो वस्तुतः महत्वपूर्ण है वह है उत्तराधिकारी रूप में प्राप्त विचार तथा आदर्श, न कि ऐतिहासिक विवरणों की निरंतरता। वस्तुतः मूल्यों की बात है। वस्तुतः ऐतिहासिक प्रक्रिया का वास्तविक अर्थ सभी सांस्कृतिक प्रकरणों को अर्थ के एक विकासशील संदर्भ के प्रकरण के रूप में प्रतिष्ठित होने में अथवा दूसरे शब्दों में आत्मबोध की गवेषणा के रूप में लिए जाने में निहित है। व्यक्तिक जीवन के स्तर पर भी कोई व्यक्ति अपने अतीत से संबंधित सभी घटनाओं तथा व्यक्तियों को याद नहीं रखता और न रख सकता है। वह केवल उन घटनाओं को उन व्यक्तियों को याद रखता है जिन्हें वह कुछ महत्व प्रदान करता है। इसी प्रकार किसी भी समाज अथवा संस्कृति में वही बातें सुरक्षित रखी जाती है जिन्हें वह अपने लिए आवश्यक या मूल्यवान समझती है। प्राचीन यूनानी तथा चीनी संस्कृति में राज्य को सर्वोपरि महत्व दिया गया तथा इसे मानव जीवन की सभी आकांक्षाओं की पूर्ति का निमित्त माना गया। राजा देव पुरुष होता था जो मनुष्य तथा आकाश के बीच स्थित था तथा राज्य की समृद्धि अथवा विपदात्मक स्थिति उसके कुशल अथवा अकुशल आचरण का प्रतिबिंबन मात्र समझी जाती थी। इन संस्थाओं को यह सर्वोपरि मूल्य प्रदान किए जाने के कारण इनकी स्मृति को इन संस्कृतियों में सावधानी से सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है। भारत में अर्थ अथवा भौतिक शक्ति को सर्वोपरि मूल्य कभी नहीं माना गया। आजकल कुछ लोग इस बात पर विशेष बल देने लगे हैं कि भारतीय संस्कृति में अध्यात्म और धर्म पर अधिक बल नहीं था तथा इसे सर्वोपरि मूल्य माना जाता था। यह कहना ठीक नहीं है। उनके इस कथन के पीछे एक भ्रामक धारणा काम करती प्रतीत होती है कि अध्यात्म तथा सेकुलरिज्म के बीच विरोध है। निसंदेह इनके मस्तिष्क में सेकुलरिज्म की एक विचित्र अवधारणा स्थित जान पड़ती है तथा वे सभी धर्मों के उच्छेद में ही इस आधुनिक मूल्य की उपलब्धि मानते हैं। धर्म की सामाजिक उपयोगिता के प्रश्न पर काफी पहले से चिंतकों में एक विवाद चला आ रहा है, जहां तक कुछ लोग इसे समस्त मानव प्रयासना का चरम बिंदु, नैतिकता की भीति तथा सामाजिक व्यवस्था एवं व्यक्तिगत शांति का मूल स्रोत माना है, वहीं कुछ लोग इसे असहिष्णुता अथवा तथा कट्टरता का कारण एवं विकास में बाधा स्वरूप मानते हैं। जहां दुर्खाइम ने धर्म को समस्त उच्च संस्कृति का स्रोत बताया, मार्क्स से इसे जनसमान की अफीम की संज्ञा प्रदान की। जो भी हो, यह एक विवेच्य प्रश्न है। जहां तक प्राचीन भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक मूल्यों की सर्वोपरिता में आस्था होने का प्रश्न है, इसमें अविश्वास केवल एक दुराग्रह ही कहा जाएगा। मूल भारतीय चिंतना अनिवार्य रूप से दुखों के आत्यंतिक विनाश अथवा मुक्ति की ओर उद्दिष्ट रही है। इस मान्यता के अनुसार ऐतिहासिक काल में स्थित इहलौकिक वस्तुएं अनित्य हैं और इस कारण उनके प्रति नित्य कामना अवांछनीय है। मानव इतिहास का मूल शक्ति अथवा धन की उपलब्धि अथवा अनुपलब्धि में न निहित होकर आत्मोत्कर्ष तथा आध्यात्मिक अनुभूति में निहित है। आध्यात्मिक मूल्यों पर विशेष बल के कारण ही भारत में तथा कथित सेकुलर साहित्य इतना कम और आध्यात्मिक तथा धार्मिक साहित्य इतनी प्रभुत मात्रा में उपलब्ध है। वेद, गीता, पुराण आदि पूरी निष्ठा के साथ इतने दीर्घकाल से अक्षरशः संप्रेषित हुए हैं। यहाँ राज्यों तथा राजाओं के इतिहास का लेखन उनके अधिकारियों का उत्तरदायित्व समझा जाता था। संपूर्ण संस्कृति इसके प्रति अधिक रुचि नहीं रखती थी। प्राचीन यूनानी तथा चीनी संस्कृति में राज्य पर दिए गए बल को ध्यान में रखने पर यह विभेद स्पष्ट हो जाएगा। इस प्रकार यह कहना ठीक नहीं है कि प्राचीन भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था। उनके मस्तिष्क में इतिहास की वस्तुतः भिन्न अवधारणा थी। इस बात के प्रचुर प्रमाण उपलब्ध हैं कि इतिहास को अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय गौरव पूर्ण स्थान प्रदान कर रहे हैं। ब्राह्मण तथा उपनिषद साहित्य में ज्ञान की इस शाखा को इतिहास वेद की संज्ञा से अभिहित किया गया है। वास्तव में इतिहास पुराण दोनों संश्लिष्ट रूप में उल्लेखित हुए हैं और उन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यह एक सर्वज्ञात तथ्य है कि वेद हिंदुओं के पवित्रतम धर्म ग्रंथ है, जिस कारण इन्हें अपौरुषेय माना जाता है। इतिहास को वेद कहना ही इस शास्त्र के प्रति भारतीय दृष्टिकोण का पर्याप्त परिचय देता है और वह भी इतने प्राचीन काल से। उत्तरवर्ती भारतीय विचार में भी इतिहास को वेद समझने की परंपरा विद्यमान रही है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि तीन वेद साम, ऋक और यजुस वेद त्रयी बनते हैं और इतिहास वेद के साथ ये वेद के नाम से जाने जाते हैं। राजा की दिनचर्या में इतिहास श्रवण को कौटिल्य ने एक आवश्यक क्रिया बताया है। मध्याह्न से पूर्व का समय सैनिक प्रशिक्षण में बिताकर राजा को मध्याह्न का समय इतिहास श्रवण में बिताना चाहिए। इस प्रसंग में कौटिल्य ने इतिहास के घटक अंगों का भी उल्लेख किया है, जिसके अनुसार इतिहास के अंतर्गत पुराण, इतिवृत्ति, आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र तथा और अर्थशास्त्र सभी आते हैं। इस प्रकार इतिहास का अर्थ केवल राजनीतिक घटनाओं का वर्णन अर्थात साम्राज्यों के अभ्युदय और पतन की कथा ही नहीं है, अपितु इतिहास का अध्ययन नैतिक नियमों, सामाजिक संस्थाओं और वैदिक नियमों का भी समावेश करता है। वैदिक साहित्य के अध्ययन से यह भलीभांति स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संस्कृति के इस प्रारंभिक युग में ही ऐतिहासिक साहित्य सृजन का प्रचलन हो चुका था और किसी न किसी रूप में ऐतिहासिक कृतियों का अस्तित्व विद्यमान था। जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, प्राचीन साहित्य में इतिहास पुराण तथा इतिहास पुराण के प्रचुर उल्लेख उपलब्ध हैं, किंतु ये तत्कालीन ऐतिहासिक कृतियां आज अनुपलब्ध है। मैक्स मूलर का विचार था कि वैदिक साहित्य में जिस सामग्री को पुराण नाम से अभिहित किया गया है, उसी का स्थान रामायण तथा महाभारत ने लिया है तथा परवर्ती पुराणों में भी यद्यपि कुछ परिवर्तित रूप में इस सामग्री को अस्तित्वमान मानना चाहिए। सामान्यता यह माना जाता है कि वैदिक युगीन प्राचीन इतिहासों का संप्रेषण मौखिक रूप से ही संपन्न होता था, किंतु सिंह का विचार है कि इसके अवशेष वैदिक साहित्य की विभिन्न शाखाओं ब्राह्मणों सूत्रों में बिखरे हुए हैं। ब्राह्मणों के युग में पुराण साहित्य ने एक निश्चित स्वरूप ग्रहण किया तथा यागिक अनुष्ठान के समय इनका श्रवण आवश्यक माना गया। समय की गति के साथ साथ इतिहास साहित्य के आकार में भी वृद्धि होती गई और अंततः यह रामायण महाभारत तथा पुराणों के माध्यम से एक सुनिश्चित रूप को प्राप्त हुआ। यास्क के समय तक एक विशिष्ट प्रकार की रचनाओं का अस्तित्व प्रतिष्ठित हो चुका था, जिन्हें ऐतिहासिक कहा जाता था। ये वेदों की व्याख्या एक विशेष दृष्टिकोण से करते थे। अन्य विशिष्ट दृष्टिकोणों से वेदों पर विचार करने वाले रचनाकारों को निरुक्ति, यागिक तथा पूर्व यागिक तथा व्याकरण इत्यादि कहा जाता था। वैदिक काल में ही ऐतिहासिक साहित्य के सृजन की परंपरा अस्तित्व में आ चुकी थी और इस युग की विविध ऐतिहासिक रचना विधाओं से कालांतर में विभिन्न ऐतिहासिक प्रवृत्तियों का जन्म हुआ। इस प्रसंग में सर्वप्रथम वैदिक साहित्य में विभिन्न स्थानों पर उद्धृत शिक्षकों की वंश सूचियों का उल्लेख किया जाना चाहिए। ब्राह्मण काल तक वैदिक यागिक अनुष्ठानों में प्रचुर जटिलता का समावेश हो चुका था। वैदिक मौखिक शिक्षा परंपरा में इस ज्ञान की अक्षुण्णता क्रमागत शिक्षक शिष्य परंपरा के कारण ही संभव हो सकी। भारतीय ऐतिहासिक परंपरा के विकास में सूतों का महत्वपूर्ण योग रहा है और वैदिक युग की राजनीतिक संरचना में इन्हें आदरपूर्ण स्थान प्राप्त था। परंपरा के इस अनुसार इन्हें राजकीय तथा पुरोहित शिक्षकों की वंश तालिका बनाने और उन्हें सुरक्षित रखने का श्रेय प्राप्त है। वंश साहित्य के सृजन की परंपरा दीर्घकाल तक चलती रही। वंश और वंशानुचरित पुराण साहित्य के आवश्यक अंग बताए गए हैं और पुराणों में विभिन्न वंशों के वंश वृक्ष दिए गए हैं। पुराणों के अतिरिक्त वंश के रूप में ऐतिहासिक रचना का विकास कई दिशाओं में मुखरित हुआ। साहित्यिक कृतियों के अतिरिक्त वंश ऐतिहासिक रचना का एक महत्वपूर्ण पक्ष राजकीय कार्यालयों में पल्लवित हुआ। ज्ञात ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कम से मौर्य काल से शासन की ओर से अभिलेखागारों की स्थापना की जाने लगी थी। कौटिल्य की सूचना के अनुसार ये राजलेखागार अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के अतिरिक्त परंपराओं, व्यवसायों के इतिहास तथा देशों, ग्रामों, परिवारों और नियमों के समव्यवहारों का भी लेखा रखते थे। उपहार के रूप में प्राप्त राज कर्मचारियों की प्राप्त आयों तथा राजा की पत्नियों और पुत्रों की आय का हिसाब रखना भी उनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता था। और जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि उनसे संधियों और मित्र अथवा शत्रु राज से प्राप्त अथवा उनको दे उपहारों इत्यादि का भी सही सही विवरण रखने की अपेक्षा की जाती थी। युवान चुवांग के विवरण से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। राजकीय शासन पत्रों से संबंधित अध्याय में कौटिल्य ने इन प्रपत्रों के विषय में यह निर्देश दिया है कि इनमें लेख जारी करने वाले शासक का नाम, वंश तथा विरुद्धों का होना अपेक्षित है। बृहस्पति स्मृति में भी भूमिदान विषयक प्रपत्र में वंश, राजकीय वंश तालिका का दिया जाना आवश्यक बताया गया है। शासन वंशों से संबंधित ये लेखागारिक प्रपत्र अब सर्वथा अप्राप्य हैं। ऐतिहासिक लेखनों का उद्भव आकस्मिक ढंग से नहीं होता, वे किसी न किसी दार्शनिक निष्ठा की अपेक्षा रखते हैं। एक विशद दृष्टिकोण से विचार करने पर इतिहास दर्शन में वस्तुतः मानव जीवन की प्रक्रिया पर एक चिंतनशील विमर्श संपन्न होता है। ऐतिहासिक विकास के स्वरूप तथा उसकी विविध अवस्थाओं की चर्चा के प्रसंग में ऐसी जिज्ञासाएं उठती हैं और उनका समाधान किया जाता है कि दर्शन तथा ऐतिहासिक विमर्श का मित्र छेदन अनिवार्य सा हो जाता है। मानव स्वरूप का निर्धारण उसकी स्वयं विषयक अवधारणा द्वारा होता है। इस बिंदु पर दार्शनिक विचार मनुष्य की चिंतन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, क्योंकि दर्शन का प्रमुख कार्य अंततः मानव अस्तित्व के रहस्यों का समाधान एवं तदंतर मनुष्य की नियति को सुनिश्चित करना है। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप क्या है, उसके समक्ष परम लक्ष्य क्या है तथा इस लक्ष्य विशेष की प्राप्ति के साधन क्या हैं, इस प्रकार के विचार विमर्शों में ऐसी जिज्ञासाएं उठती है और इनके समाधान की प्रक्रिया में जो उत्तर प्राप्त होते हैं वे वस्तुतः उस दृष्टिकोण विशेष का निर्धारण एवं निश्चयन करते हैं जिससे ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया को समझा जाता है। इन्हीं उत्तरों से कोई समाज अथवा राष्ट्र यह जानता है कि उसके अतीत में मूल्यवान क्या है और इस ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वह उसे सुरक्षित रखने की चेष्टा करता है, क्योंकि किसी राष्ट्र अथवा समाज के संदर्भ में वैसे किसी व्यक्ति के अपने इतिहास के संदर्भ में भी यह सत्य है। इतिहास उस राष्ट्र अथवा समाज द्वारा अपने अतीत में मूल्यवान समझे जाने वाली वस्तुओं की सुरक्षा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस तथ्य विषय को ध्यान में रखते हुए प्रमुख भारतीय दार्शनिक अवधारणाओं में निहित ऐतिहासिक समस्याओं पर विचार प्रासंगिक होगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इसमें किसी प्रकार के संदेह के लिए स्थान नहीं दिखाई पड़ता कि ईश्वरवादी संप्रदायों तथा सांख्य योग दर्शन का पुराणों एवं महाभारत में प्राप्त ऐतिहासिक लेखन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। इसी प्रकार भौतिकवादी लोकायत दर्शन के प्रभाव के परिणाम स्वरूप शासकों में पुरोहितों के प्रभाव से मुक्त होकर राजकीय प्रतिष्ठा के उद्घोषण की आकांक्षा तथा शासकीय प्रपत्रों की नियमित लेखन हेतु एक विशेष प्रकार के अधिकारी वर्ग की नियुक्ति के में रुचि उत्पन्न हुई होगी। संप्रति हमारा मंतव्य प्राचीन भारतीयों की कुछ महत्वपूर्ण दार्शनिक अवधारणाओं में अंतर्निहित ऐतिहासिक पूर्वापेक्षाओं पर विचार करना मात्र है। ऊपर हमने यह कहा है कि मूल भारतीय चिंतना आध्यात्म पर विशेष बल देती है तथा मोक्ष को परम मूल स्वीकार करती है। यह मूल अतिमा में स्थित है तथा मनुष्य को स्थिर आसक्ति केवल इसी के प्रति होनी चाहिए। ऐतिहासिक काल में स्थित सभी लौकिक वस्तुएं नश्वर हैं और इस कारण उनमें इस प्रकार की आसक्ति केवल बंधन का कारण बनेगी। यहाँ यह भ्रांति हो सकती है कि इस तर्क के अनुसार अनसांसारिक मूल्यों का सर्वथा मिथ्यात्व और तथा उनकी ओर उद्दिष्ट सभी कार्य व्यापारों की निरर्थकता सिद्ध होती है। इस प्रसंग में यह ध्यातव्य है कि भारतीयों ने ऐतिहासिक काल के विशेष महत्व को स्वीकार किया है, जिसमें रहते हुए ही एक विशेष प्रकार का आचरण करते हुए मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होना है। मोक्ष की प्राप्ति एकाएक नहीं हो जाती, मनुष्य अपने व्यक्तित्व का निरंतर उत्कर्ष करते हुए इसे प्राप्त करता है और इसके लिए काल सीमा का निर्धारण प्रत्येक व्यक्ति की अपनी क्षमताओं पर होता है। अतएव जब तक लक्ष्य अप्राप्त है तब तक संसार और इसके सभी कार्य व्यापार मूल्यों से संयुक्त हैं और प्रत्येक व्यक्ति को इसमें प्रवृत्त होना है। यद्यपि उससे अपेक्षा की जाती है कि वे सभी धर्म अथवा नैतिक नियम से नियंत्रित हों। इस प्रकार पुरुषार्थ की अवधारणा में धर्म के साथ अर्थ और काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधन के रूप में स्वीकार किए गए हैं तथा ऐतिहासिक काल में रहने वाले सभी लोगों के लिए ये अनावश्यक हैं। परम सुख तथा शांति की दृढ़ इच्छा ने भारतीयों को इहलोक के महत्व से विमुख नहीं किया, केवल उन्होंने इहलोक को परम मूल्य नहीं स्वीकार किया। इसी विश्वास के कारण भारतीय एक गौरवपूर्ण अतीत की रचना कर सके और उन्होंने मानव जीवन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां की। इसके अतिरिक्त भारतीय चिंतकों का एक ऐसा वर्ग भी था जो किसी परलौकिक सत्ता में विश्वास नहीं करता था और वर्तमान जीवन को ही एकमात्र सत्य मानता था। लोकायत दर्शन ने अर्थ और काम मात्र को मूल माना और इस प्रकार भारतीय दार्शनिक चिंतना में भौतिकवादी प्रवृत्ति का अनुप्रवेश किया। भारतीय जनमानस को प्रभावित करने वाली प्रमुख दार्शनिक अवधारणाओं में कर्म की अवधारणा का विशेष स्थान है। जीवन में चतुर्दिक दृश्यमान विविधताओं तथा विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न प्रकार के भोगों और अनुभवों के एक तर्कसम्मत स्पष्टीकरण की प्राप्ति कर्म के सिद्धांत में देखी जाती है। इस सिद्धांत की चर्चा में स्पष्टतः ऐतिहासिक काल में मनुष्य के स्थान का प्रश्न सन्निहित है और अतएव इतिहास बोध के प्रसंग में इस सिद्धांत का एक विशिष्ट महत्व है। समान रूपेण कर्म के सिद्धांत का अर्थ है मनुष्य जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार फल प्राप्त करता है। यदि इसे दार्शनिक शब्दावली में कहा जाए तो इस सिद्धांत की मान्यता है कि प्रत्येक नैतिक कर्म अपने पीछे एक अदृष्ट शक्ति छोड़ता है जो भविष्य में किसी समय स्वानुरूप फल की प्राप्ति कराता ही है। कर्म का सिद्धांत अनिवार्यतः संसार तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है और यह भविष्य उसके किसी भी अगले जन्म में पड़ सकता है। वैदिक युग के अनुष्ठानात्मक एवं कर्मकांडीय धर्म में इस प्रकार के किसी सिद्धांत का प्रतिपादन असंभव था, किंतु उपनिषदों में यह पूर्णतः सुप्रतिष्ठित सिद्धांत के रूप में मिलता है तथा छठी शताब्दी के सभी दार्शनिक चिंतकों ने इस पर तथा इससे संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श आवश्यक समझा। कर्म के सिद्धांत की भाग्यवादी व्याख्या बड़ी स्वाभाविक है तथा भारत में इस प्रकार की व्याख्या केवल साधारण अशिक्षित जनता में नहीं अपितु बुद्धिवादियों तथा दार्शनिकों में भी उदाहरणार्थ आजीवक संप्रदाय में सर्वथा अज्ञात नहीं है, किंतु यदि मनुष्य के सभी कार्य व्यापारों एवं उसके जीवन की सभी घटनाओं को पूर्व नियोजित मान लिया जाए तो इससे यह अवधारणा का पूर्ण निराकरण सिद्ध होगा कि मनुष्य इतिहास का सृष्टा है, क्योंकि सृजन में कार्य स्वतंत्र की अपेक्षा निहित होती है। वह नियति के हाथ में एक खिलौना मात्र होगा जो ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया को कोई दिशा प्रदान करने में सर्वथा असमर्थ है। उस स्थिति में सभी ऐतिहासिक घटनाएं किसी अति मानवीय शक्ति की लीला मात्र मानी जाएंगी, जिनमें मनुष्य द्वारा किसी प्रकार के परिवर्तन की संभावना का सर्वथा निराश होगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कर्म के सिद्धांत की तर्कसम्मत व्याख्या भाग्यवाद का पूर्ण निराश करती है और न ही प्रमुख भारतीय दर्शनों में बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं इसे इस रूप में समझा गया है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह पुण्यतया मनुष्य के ऊपर है कि वह बंधन में रहे अथवा उससे मुक्ति पाले। वस्तुतः इस सिद्धांत को ठीक से न समझने के पीछे इस तथ्य विशेष की उपेक्षा होती है कि भारतीयों ने मानव के समग्र अस्तित्व के संदर्भ में सदैव दो स्तरों की परिकल्पना की है, माया का स्तर अथवा दृश्यमान विश्व तथा परमार्थ अथवा परम सत्य। प्रथम स्तर पर मनुष्य किसी अन्य प्राकृतिक पदार्थ के समान एक प्रदत्त ऐतिहासिक काल में रहता है, जबकि दूसरे स्तर पर उसे प्राकृतिक जगत में निहित सभी ऐतिहासिकता एवं द्वैत के पार जाना होता है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का नैतिक जीवन उसकी आध्यात्मिक नियति से संबंध है तथा जीवन की अयथार्थता एवं नश्वरता के परागमन के इच्छुक व्यक्ति को इसके माध्यम से एक आध्यात्मिक आश्वासन प्राप्त होता है। किंतु भौतिक जीवन के संबंध में जहाँ की प्राकृतिक नियम अपने समान ढंग से कार्य करते हैं तथा विविध भौतिक अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए जिनका सम्यक नियंत्रण मनुष्य के लिए आवश्यक है, इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया जाता। जब तक मनुष्य इस संसार में रहता है तथा अहम भाव से समन्वित होता है, वह एक स्वतंत्र करता है। उसके पीछे एक लंबा इतिहास है और उसे इस इतिहास को चरम परिणति तक पहुंचाना है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि कर्म का सिद्धांत किसी भी रूप में कर्तृत्व भावना के निराश का सिद्धांत नहीं है। मनुष्य संकल्प शक्ति से युक्त प्राणी है और उसमें इसको कार्य रूप में अनुदित करने की क्षमता है, जिसके द्वारा वह इतिहास को एक निश्चित दिशा प्रदान करने में समर्थ है। इस प्रकार भारतीय चिंतना के अनुसार सामान्यता मनुष्य की स्वतंत्रता में विश्वास प्रकट किया गया है, किंतु इतिहास निर्माण कैसे होता है? प्रत्येक व्यक्ति इतिहास सृष्टा नहीं होता। प्रत्येक युग तथा प्रत्येक समाज में इतिहास निर्माण केवल कुछ जनों द्वारा संपन्न होता है। ऐतिहासिक शब्दावली में उन्हें महान व्यक्ति जननायक की संज्ञा दी जा सकती है। भारतीय चिंतना में अवतारवाद के सिद्धांत से यदि धार्मिक परिच्छाया को हटा दिया गया तो विविध अवतारों को इस प्रकार के महान व्यक्तियों के रूप में समझा जा सकता है, जो विभिन्न समयों में उत्पन्न होकर अपने समाज और परिवेश के अवांछनीय तत्वों को दूर कर उन्हें एक नया रूप प्रदान करते हैं। गीता में अवतारवाद के सिद्धांत को सर्वाधिक सुंदर ढंग से व्यक्त किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव इतिहास में जब जब नैतिक अथवा सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न होती है, तब तब साधु जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए ईश्वर स्वयं पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभित्थानां धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भारतीय विचार के अनुसार ईश्वर तत्व प्रत्येक जीव में विद्यमान है। अवतार सामान्य जीव से केवल इस अर्थ में विशिष्ट होता है कि इसमें यह तत्व अपेक्षाकृत पर्याप्त अधिक मात्रा में विद्यमान रहता है। ये अवतार यह अपने युग के महान व्यक्ति समसामयिक अपेक्षाओं को ठीक से पहचानते हैं और तदनुरूप कार्य करते हुए इतिहास प्रक्रिया को एक विशिष्ट आयाम प्रदान करते हैं। इतिहास दार्शनिकों के एक वर्ग के अनुसार ये महान व्यक्ति ही इतिहास सृष्टा होते हैं, किंतु इतिहास दर्शन की इस संप्रदाय के विरुद्ध एक अन्य विचार भी है जो ऐसे महान व्यक्तियों को इतना महत्व नहीं देता, जिसके अनुसार स्वयं ये महान व्यक्ति अपने युग की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया इन व्यक्तियों की इच्छा एवं कार्य व्यापारों पर आश्रित नहीं होती, अपितु यह एक स्वयं विकासशील धारा है जिसमें इन व्यक्तियों की नैमित्तिक भूमिका मात्र होती है। वस्तुतः अवतारवाद में इन दोनों विचारों का समन्वय देखना चाहिए। ये अवतार एक निश्चित प्रयोजन से आते हैं, किंतु ये सामान्य विश्व व्यवस्था जो विश्व के विविध प्राणियों तथा वस्तुओं को समंजसित रूप में व्यवस्थित रखती है से स्वतंत्र नहीं होते। विश्व की प्रत्येक वस्तु उसी परम सत्ता से उद्भूत है। यह परम सत्ता काल है जो सबको चलाता है और किसी विशेष युग अथवा परिस्थिति में अवतार विशेष के जन्म का निर्धारण भी इसी के द्वारा होता है। कल्यति इति कालः, कालः कल्यते लोकम्, कालः कल्यते जगत्, कालः कल्यते विश्वम्, तेन कालो अभिधीयते। यह एक निर्विवाद सत्य है कि अवतारवाद ने कभी कभी भारतीय मस्तिष्क में एक भाग्यवादी प्रवृत्ति को जन्म दिया। विपत्ति के अवसर पर अकर्मण्य होकर ईश्वर के अवतार द्वारा विपत्ति निवारण की आशा इसी प्रवृत्ति की देन है, किंतु इस सिद्धांत ने भारतीयों को एक विशिष्ट जीवन शक्ति तथा आशावादिता भी प्रदान की, जिसके कारण वे विभिन्न संकटों तथा विपत्तियों का यह विश्वास रखते हुए झेल सके कि वर्तमान विपत्ति की घड़ी कुछ ही काल के लिए है और उपयुक्त समय पर कोई देवी सत्ता उत्पन्न होने वाली है। अवतारवाद में एक अन्य ऐतिहासिक निहितार्थ छिपा हुआ है। अवतार वांछनीय तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही यह एक विरोधी शक्ति की पूर्वापेक्षा रखता है जो दुष्टता का प्रतीक होती है। इन दोनों विरोधी शक्तियों में शाश्वत काल से संघर्ष चला आ रहा है, जिसमें कभी एक की और कभी दूसरे की प्रभुता स्थापित होती रहती है और उसी के अनुसार युग विशेष परिभाषित होता रहता है। इतिहास में इस प्रकार का द्वैध पूर्वापेक्षित है, क्योंकि इसके बिना इतिहास में किसी प्रकार के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐतिहासिक वस्तु सामग्री कभी भी एक रूप नहीं होती। भारतीयों ने केवल इस आशावादिता को अपनाया है कि अंततः साधु तत्व की ही विजय होगी। पौराणिक विश्वास के अनुसार वर्तमान चक्र कली युग के अवतार का जन्म अभी होना है। इस प्रकार बौद्धों के अनुसार मैत्रेय बुद्ध का जन्म भविष्य में किसी समय होने वाला है। इस प्रकार के विश्वास में एक इल्हामी तत्व विद्यमान है, जिससे ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया को एक विशेष अर्थ तथा प्रयोजन प्राप्त होता है। अवतारवाद के सिद्धांत से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ युगों का सिद्धांत है। भारतीय विचार में काल के रेखीय विकास क्रम में विश्वास नहीं है। इस विश्वास क्रम को चक्रीय माना गया है। सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली, ये चार युग इसी उल्लेख क्रम में एक दूसरे का अनुगमन करते हैं। प्रत्येक युग उसके अंदर धर्म की समान स्थिति के आधार पर परिभाषित होता है। धर्म को एक गाय के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो सतयुग में अपने चारों पैरों पर खड़ी होती है, किंतु प्रत्येक अनुवर्ती युग में उसके एक एक पैर विनष्ट होते जाते हैं और अंततः कलयुग में उसे एक पैर पर ही खड़ा रहना होता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक अनुवर्ती युग में अधर्म की अपेक्षाकृत वृद्धि की मान्यता के कारण युग सिद्धांत को मानव नियति की निराशावादी व्याख्या नहीं माननी चाहिए। नहीं, यह सामान्य अवनति का युग है। कलयुग में केवल धर्म का हास बताया गया है, भौतिक सुखों के साधनों तथा वैज्ञानिक एवं यांत्रिक उपलब्धियों का नहीं। आवश्यकता से अधिक समृद्धि तथा प्रचुर सुख साधनों के बीच धार्मिकता तथा नैतिकता का पालन दुष्कर प्राय होता है एवं मानव जीवन में परस्पर विरोध की संभावनाएं बढ़ जाती है। इन दोनों में अनिवार्य विरोध नहीं है, किंतु जन सामान्य के स्तर पर ऐसा ही घटता दिखाई देता है। वर्तमान युगीन समान स्थिति, जिसमें मनुष्य ने भौतिक तथा वैज्ञानिक यांत्रिक क्षेत्र में अचिंतनीय उपलब्धियां प्राप्त की है, किंतु साथ ही विक्षोभ, असंतोष, पूर्ण विनाश के भय से आक्रांत है, संभवतः भारतीयों की युग परिकल्पना का परिपोषण करती है। किंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि कलयुग में परम लक्ष्य की प्राप्ति की संभावनाएं कम हो जाती है। प्रत्येक प्रयासशील व्यक्ति अपने उद्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ है, अपितु इस युग में लक्ष्य प्राप्ति के साधन भी अपेक्षाकृत सरल होते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विचार करने पर युग सिद्धांत के अनुसार इतिहास का पथ न तो स्थिर है और न ही यह सीधी रेखा में है। यह चक्रीय है, जिसमें अभ्युदय एवं पतन दोनों ही स्थान पाते हैं। प्रत्येक समाज एवं राष्ट्र के जीवन में विभिन्न अवसरों का कभी उत्थान का समय आता है, कभी पतन एवं ह्रास का। इतिहास की वस्तु सामग्री एक रूप न होकर इन दोनों से ही निर्मित होती है। युग सिद्धांत में यही ऐतिहासिक अर्थ निहित दिखाई पड़ता है। ऊपर एक अन्य स्थान पर इस बात की चर्चा की जा चुकी है कि भारतीय एक ज्ञान शाखा अथवा विषय के रूप में इतिहास को अत्यंत महत्वपूर्ण समझते थे। यहाँ तक कि कुछ वैदिक मंत्रों को भी, जिनके अपौरुषेयत्व पर भारतीय परंपरा में बहुत अधिक बल दिया गया है, इतिहास की संज्ञा प्रदान की गई है अथवा इन्हें इतिहास के लक्षणों से संपन्न माना गया है। ऋग्वेद के दसम मंडल में के एक मंत्र की व्याख्या करते हुए यास्क ने निरुक्त में इसे ऋक् गाथा का तथा इतिहास का सम्मिश्रण बताया है। बृहद देवता में एक पूरे सूक्त को इतिहास सूक्त की संज्ञा प्रदान की गई है। ब्राह्मण साहित्य, उदाहरणार्थ शतपथ ब्राह्मण 13.4.3.3.12 तथा उपनिषदों में उदाहरणार्थ छांदोग्य 7.1.2। ऐतिहासिक लेखनों को इतिहास वेद कहा गया है। यहाँ तक उल्लेखनीय है कि भारतीयों के अनुसार वेद पृथ्वी पर पवित्रतम वस्तु है। ऐतिहासिक लेखनों के लिए इतिहास के अतिरिक्त आख्यान तथा पुराण शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। पुराण निसंदेह एक अधिक व्यापक शब्द था, किंतु कम से कम अथर्व वेद में एक स्थल पर 11.10.7 इसे प्राचीन कथा के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, किंतु सामान्य रूपेण इतिहास पुराण का एक संश्लिष्ट शब्द के रूप में प्रयोग हुआ है। यद्यपि वैदिक मंत्रों में प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री मिलती है तथा प्रवर्तित साक्ष्यों द्वारा इस काल में ऐतिहासिक रचनाओं का अस्तित्व माना गया है, तथापि एक विषय के रूप में इतिहास का अस्तित्व स्पष्टतः प्रमाणित नहीं होता। किंतु अथर्ववेद तथा ब्राह्मणु शतपथ से यह स्पष्ट है कि इतिहास निसंदेह ऐतिहासिक लेखनों का परिचायक था। निरुक्त तथा बृह देवता जैसे प्रारंभिक ग्रंथों में इतिहास को पुरावृत्त प्राचीन घटनाएं का संकुचित अर्थ प्रदान किया है, किंतु इतिहास विषयक विकसित एवं परिपक्व भारतीय अवधारणा में यह न केवल राजनीतिक इतिहास जैसी ऐतिहासिक रचनाओं को सन्निविष्ट करता था, अपितु इसके अंतर्गत नैतिक इतिहास, धार्मिक इतिहास, सामाजिक संस्थाओं का तथा अर्थ एवं राजनीति इत्यादि का भी इतिहास था आता था। उदाहरणार्थ कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पुराण, इतिवृत्ति, आख्यायिकाएं, आखिका कथाएं उदाहरण, शिक्षाप्रद दृष्टांत, धर्मशास्त्र तथा अर्थशास्त्र को इतिहास की संज्ञा से विशेषित बताया गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन के चार प्रकार दिखाई पड़ते हैं, अथवा यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए, प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन को इन चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। धार्मिक कथाओं तथा पुराण कथाओं के रूप में पहला धार्मिक कथाओं तथा पुराण कथाओं के रूप में इतिहास, दूसरा शासन वंशीय प्रलेखों के रूप में इतिहास, तीसरा जीवन चरित्र जिसमें धार्मिक पुरुषों की जीवनियां भी सम्मिलित हैं के रूप में इतिहास, तथा इतिवृत्ति के रूप में इतिहास। प्रथम वर्ग के अंतर्गत साहित्य का वह प्रकार आता है जिसमें अतीत का विवरण संयोग बस कर दिया गया है, अर्थात जिसमें ऐतिहासिक सामग्री धार्मिक कथाओं तथा पुराण कथाओं के साथ घनिष्ठ रूपेण संलग्न है एवं इतिहास को उसमें से निकालना होता है। सर्वप्रथम हम वैदिक साहित्य को ही लें तो देखेंगे कि दस राज्य युद्ध जैसे स्पष्ट ऐतिहासिक अवतरणों को छोड़ भी दें तो विभिन्न धार्मिक एवं पुराण कथा विषयक अवतरणों में प्रचुर ऐतिहासिक सूचनाएं भरी पड़ी है। वे हमें न केवल धार्मिक, दार्शनिक तथा आध्यात्मिक विचारों के विकास से परिचित कराती हैं, अपितु उनसे समसामयिक जीवन के विविध पक्षों, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक का चित्रण भी प्राप्त होता है, जो इतिहासकार के अध्ययन का एक मुख्य विषय है। देवताओं का विवेचन हमारे समक्ष वैदिक युगों का सही स्वरूप प्रकाशित करता है। ऐसे लोग जो युद्ध प्रिय थे, जो जीवन के सभी सुखकर वस्तुओं, राय तथा शक्तिवर्धक वस्तुओं, बाजह को पाना चाहते थे, जो अपने शत्रुओं को पराजित करने में सहायक उपादानों, शक्ति तथा अश्व को उच्च मूल्य प्रदान करते थे, तथा जो देवताओं की प्रार्थना एक दुर्बल एवं असहाय प्राणी के रूप में नहीं अपितु समानता के स्तर से करते थे, यह देखने के लिए कि किस प्रकार एक देवता विशेष का परिवर्तनशील स्वरूप हमें सामाजिक परिवर्तन का अभिज्ञान करा सकता है, हम इंद्र का उदाहरण ले सकते हैं, जो कि वैदिक मंत्रों का प्रमुख देवता है। इंद्र का युद्ध देवता से वर्षा के देवता में परिवर्तन एक घुमक्कड़ तथा लड़ाकू समुदाय का कृषकों के एक अस्थायी स्थान पर रहने की अवस्था में संक्रमण का परिचायक है। पुराण कथाओं द्वारा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हो सकने का एक अन्य दृष्टांत पुरुष सूक्त है, जिसमें पुरुष के चार अंगों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों का उद्भव बताया गया है। अब इसे सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया जाता है कि मंत्र का प्रमुख प्रयोजन वस्तुतः सामाजिक शरीर तथा इसके चार घटक अंगों की चर्चा है। यहाँ हम दो महाकाव्यों रामायण तथा महाभारत को छोड़कर सीधे पुराणों को लेते हैं, जो इस प्रकार के साहित्य के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। सिद्धांत के अनुसार पुराण में पांच बातों का विवेचन है, सर्ग अर्थात सृष्टि, प्रतिसर्ग अर्थात प्रलय, वंश अर्थात ऋषियों तथा राजाओं की वंशावलियां, मनवंतराणियां मनुओं की वंशावलियां तथा वंशानुचित राजाओं की वंशावलियां। इनमें से प्रथम दो तथा चतुर्थ ब्रह्मांड स्वरूप के विषय से संबंध हैं एवं वंश तथा वंशानुचरित मानवीय इतिहास से संबंधित हैं। पुराणों में हमें विभिन्न शासकों, शासन वंशों तथा शासकों के कार्यों की चर्चा प्राप्त होती है। पुराणों में एक अध्याय का नाम भुवन कोश है, शब्दशः जिसे विश्व वृतांत से संबद्ध होना चाहिए, किंतु इसका प्रमुख प्रयोजन भारतवर्ष के भूगोल का विवरण प्रदान करना है। यह भारतवर्ष राजनीतिक दृष्टिकोण से अस्तित्वमान भारतवर्ष नहीं, अपितु वह समस्त भूक्षेत्र है जो भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव के अंतर्गत समझा गया है। इस कारण भारत के विवरण के प्रसंग में पुराण मध्य एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया को भी सन्निविष्ट कहते हैं, जो वस्तुतः इससे बाहर हैं। सामान्य रूपेण चौथी शताब्दी तक के भारत के भूगोल के विषय में पुराणों में बड़ी मूल्यवान सूचनाएं निहित हैं। कुछ समय पहले तक पुराणों को ऐतिहासिक मूल्य से सर्वथा शून्य माना जाता था। पुराणों का अध्ययन करते समय इस तथ्य विशेष को सदैव मस्तिष्क में रखना चाहिए कि वे मनुष्य इतिहास को एक सार्वभौमिक इतिहास के संदर्भ में रखते तथा समझते हैं, और इस दृष्टिकोण से आधुनिक इतिहास लेखन के बहुत बड़े भाग को पौराणिक कहा जा सकता है। कभी कभी पुराण शासकों की शासन विधियों को अविश्वसनीय रूप से बहुत बड़ी संख्या प्रदान करते हैं तथा देशों एवं लोगों के विषय में अतिशयोक्ति पूर्ण विवरण देते हैं। इन कारणों से मेकाले जैसे आलोचकों ने इन्हें अविश्वसनीय तथा निरर्थक कहने को प्रेरित किया, किंतु पुराणों के ये आलोचक यह भूल जाते हैं कि यह अतिशयोक्ति पूर्ण विवरण कलयुग अर्थात वर्तमान काल से पहले की घटनाओं तथा व्यक्तियों के प्रसंग में है। कलयुग के प्रसंग में दिए गए विवरण तथा संख्याएं अत्यंत विवेकपूर्ण हैं और पौराणिकों में इस बोध का अस्तित्व प्रदर्शित करते हैं कि वर्तमान ऐतिहासिक काल के तथ्यों को नहीं विकृत करना चाहिए। इस प्रकार वे जब भारत के बाहर के प्रदेशों का विवरण देते हैं तभी उनमें अविश्वसनीयता दिखाई पड़ती है और यहाँ वे यात्रियों की कथाओं का स्वरूप ग्रहण करते दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः सुनी हुई परंपरा तथा कल्पना के आधार पर दूरस्थ प्रदेशों का इस प्रकार का विवरण अकेले पुराणों की ही विशिष्टता नहीं है। इस प्रकार के विवरण यहाँ तक कि तथा कथित इतिहास के पिता हेरोडोटस में भी दिखाई पड़ते हैं। उदाहरणार्थ हेरोडोटस एक भारतीय जनजाति की चर्चा के प्रसंग में कहता है कि उनके कान इतने बड़े होते हैं कि वे अपने संपूर्ण शरीर को इसमें लपेट लेते हैं। कुछ विद्वानों की संकालुता के बावजूद पुराणों के अध्ययन से उपलब्ध राजनीतिक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सूचनाओं को अन्य विद्वानों द्वारा विश्वसनीय माना गया है। पारजिटर वासुदेव शरण अग्रवाल तथा हाजरा जैसे विद्वानों ने विद्वान समाज का पुराणों के प्रति दृष्टिकोण को बदल दिया है। आधुनिक शोधों ने पुराणों को पुनः प्रतिस्थापित ही किया है एवं उनमें स्मिथ जो यद्यपि भारतीय इतिहास के प्रति सहानुभूति परक दृष्टिकोण रखने वाला लेखक नहीं है के इस कथन का समर्थन होता है कि आधुनिक यूरोपीय इतिहासकारों ने गलती से पौराणिक सूचियों के प्रति अविश्वास की प्रवृत्ति अपनाई है, किंतु सूक्ष्म अध्ययन से उनमें पर्याप्त विशुद्ध तथा मूल्यवान परंपरा प्राप्त होती है। वैदिक साहित्य में विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक लेखनों का अस्तित्व प्रमाणित होता है। वंश गाथाएं, नाराशंसी एवं दान स्तुति वंश पुरोहितों तथा राजाओं की वंशावलियों की सूची देते हैं, जबकि अन्य तीन राजकीय जननायकों एवं संरचकों की प्रशंसा से संबंध है। परवर्ती काल में इन अव्यवस्थित ऐतिहासिक रचनाओं को एक सुसंगठित एवं व्यवस्थित स्वरूप प्राप्त हुआ है। जहां एक और इस प्रकार के लेखनों का राजाओं तथा संरक्षकों की जीवन कथाओं जिन्हें चरित्र कहा जाता था तथा शासकीय इतिवृत्तों उदाहरणार्थ कलहन की राज तरंगिनी के रूप में विकास हुआ, वहीं दूसरी ओर इन्हीं ने राजाओं को अपने शासन काल की घटनाओं के विवरण संग्रह के लिए भी प्रेरित किया। प्रारंभिक कालों में जबकि राजकीय शक्ति का स्रोत ब्राह्मणों की प्रार्थनाओं में स्थित माना जाता था, तब राज इन ब्राह्मणों को संरक्षण प्रदान करते थे एवं इस प्रकार के शासकीय विवरणों के लेखन का कार्यभार उन्हीं के ऊपर होता था, किंतु कालांतर में राजकीय शक्ति के स्रोत की इस अवधारणा में अविश्वास होने पर तथा राजाओं द्वारा अपने स्वतंत्र एवं सर्वोपरि प्रभुत्व की उद्घोषणा के पश्चात ब्राह्मणों ने इस ओर उदासीनता दिखाई और उन्होंने राजनीतिक घटनाओं में रुचि लेना बंद कर दिया। उनके लिए राजा का जीवन तथा उसके कार्य उतने महत्वपूर्ण नहीं रह गए और उन्होंने इन्हें ब्रह्मांडीय इतिहास के एक गौण अंग के रूप में समझा। समय समय पर कुछ दरबारी लेखकों ने अपने संरचकों की जीवन कथा पर पुस्तकें लिखी। किंतु उनका विशेष प्रयोजन उन्हें साहित्यिक प्रतिभा तथा चातुर्य के एक प्रकाशन के रूप में प्रस्तुत करना था, एक ऐतिहासिक विवरण के रूप में प्रस्तुत करना नहीं। दूसरी ओर राजाओं ने इस कार्य के लिए अपने अधिकारियों को नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया, जिनसे सावधानीपूर्वक घटनाओं की लेखन की अपेक्षा की जाती थी। कम से कम मौर्य काल से इस प्रकार के विभाग का अस्तित्व प्रमाणित होता है। अशोक के लघु शिलालेख की एरागुडी प्रति में कर्णिक नामक अधिकारी की चर्चा है, जो संभवतः लेखा अधिकारी था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से तो निश्चित रूपेण इस प्रकार का एक राग का अस्तित्व प्रमाणित होता है। गुप्त अभिलेखों में अचपटलाधिकृत नामक अधिकारी का उल्लेख है, जिसे राजकीय प्रलेखों का प्रधान संग्रह कहा जाता है। हर्ष के समय तक इस विभाग की निरंतरता का समर्थन युवान चुवांग के समाज साक्ष्य से होता है, किंतु प्रभुत्व मात्रा में हुए राजनीतिक उथल पुथल के कारण ये राजकीय प्रलेख सुरक्षित नहीं रह सके और अब हमें नहीं प्राप्त हैं। यह स्मरणीय है कि प्राचीन भारत में लिखने वाले ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मणों को राजकीय महत्व के इन प्रलेखों से कोई महत्व नहीं था और इस कारण उनके द्वारा बाद की पीढ़ियों के लिए इनकी सुरक्षा तथा संप्रेषण को आवश्यक न समझा जाना स्वाभाविक प्रतीत होता है। ब्यूलर का एक यह कथन उपयुक्त है कि भारतीय पंडितों ने श्रीहर्ष के नैषधीय चरित्र पर टीकाएं लिखने तथा उसे सुरक्षित रखने में बड़ी रुचि दिखाई है, किंतु नवसाहसांक चरित्र, जिसे में कि लेखक के संरक्षक राजा के कार्यों का विवरण है, को विस्मरण के गर्त में जाने देने से रोकना उन्हें आवश्यक नहीं समझा। प्राचीन भारत में ब्राह्मण की अतीत के संरक्षक तथा संप्रेषक थे और इस प्रकार के लेखनों की विलुप्ति के लिए उनके उदासीन दृष्टिकोण को ही उत्तरदायी समझना चाहिए। इसके लिए उन पर दोष आरोपित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण नहीं था।